Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो प्रज्ञप्ति मात्र है, इसी को प्राज्ञ कहा है। ये तृतीय पाद हो गया। तो हमारे भाई तीन नाम हो गए, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। हमारे ही हुए या तीन आदमियों के हुए? हमारे हुए। आदमी एक, नाम तीन। तीन नाम क्यों? कि तीन अवस्थाओं में तीन नाम। तो कल ऐसे ही पूछ रहे थे कोई, तो बोले अभिमानी और पुरुष, जागृत पुरुष, जागृत अभिमानी, जागृत दृष्टा। तो इन ये तीन है कि एक है? ये भी तो एक ही है ना। दृश्य रूप से, व्यावहारिक रूप से उसी को पुरुष बोलते हैं, और उस व्यवहार का जब वो अभिमान करता है तो उसको अभिमानी बोलते हैं, और जब अभिमान भी नहीं करता और व्यवहार में भी कोई उसकी रुचि नहीं है, सिर्फ देखता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसी देह में ये परम पुरुष बैठा हुआ है। अब इसमें कहते हैं कि ये तो ठीक है, आत्मा तो समझ में आ रहा है, लेकिन परमात्मा तो अलग रह ही गया ना। जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मा आत्मज्ञान जीवन का लक्ष्य थोड़ा ही है। अब ये नारायण वज्र श्लोक है, ये मंत्र है छठा। देखो इसमें असंभावना मत करना। एक सज्जन ने ये मंत्र पढ़ा और उठ के भागे। वो मैं नहीं मान सकता इस बात को। मैं भला, मैंने वो प्राज्ञ के लिए कह रहे कि मैं प्राज्ञ हूं यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये मैं प्राज्ञ परमेश्वर हूं ये मैं नहीं मान सकता। परमेश्वर अलग है, मैं अलग हूं। तो इस श्लोक के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ता है, तब ये बात समझ में आती है। और थोड़े विचार से भी काम नहीं चलता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हो मैं संशय सब भंगा। बहुत दिनों तक आप सत्संग करो, विचार करो, प्रश्नोत्तर करो, तब समझ में आती है कि परमात्मा और आत्मा, जिसको शास्त्र में परमात्मा कहा है, इस आत्मा का ही एक नाम परमात्मा है। अच्छा, आपका जो आभूषण है वो सोना है कि नहीं? बोले नहीं, मैं तो आभूषण ही मानूंगी, सोना नहीं मानूंगे। अच्छा, तो हमारा सोना हमको दे दो, तुम आभूषण लिए बैठे रहो। आप आभूषण को सोने से अलग नहीं कर सकते। अब ये नाम रूप वाली इकाई जीवात्मा की जो ये कल्पित हो गई है, वो चाहे कर्म से हुई हो, चाहे ईश्वर के संकल्प से हुई हो, चाहे केवल अविद्या से हुई हो, ये तीनों पक्ष दर्शन शास्त्र में चलते हैं। पूर्व मीमांसक कहते हैं कि कर्म के अनुसार शरीर मिला है, तो कर्म से ही आकृति बन गई, लेकिन बनी काय में? उसी सोने में बनी ना। उसी सोने में एक स्त्री शरीर बना हुआ है, एक पुरुष शरीर बना हुआ है, एक आदमी बना हुआ है, एक पशु बना हुआ है, एक पक्षी बना हुआ है। तो ये जो भेद है ये तो कर्म के कारण हो सकता है। हालांकि इसका भी जो इसका लास्ट प्रकरण है मांडुक्य कारिका का अलग संति, उसमें इसका खंडन है। खंडन इसलिए नहीं होता है कि खंडन करना है, खंडन इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई संशय आत्मा की ब्रह्म रूपता में रह ना जाए। तो नारायण, अगर आपको उपासना का आग्रह है तो ईश्वर को आप अपने से अलग मानो और उपासना करो, और अगर वो आग्रह आपका ढीला है और गुरु और शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा अच्छी है तो उनकी बात को भी विचार करके मान लो, तो इसी जीवन में काम हो सकता है, वरना चलो संस्कार पड़ेगा, कोई बात नहीं है। असंभावना नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अभी हम इसके काबिल नहीं है, वो बात दूसरी है। तो यहां कह रहे हैं कि छठा मंत्र, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। ये एष, एष माने यह, तो ये एष उसके लिए प्रयोग होता है जिसका प्रकरण चल रहा है, इमीडिएटली बिफोर जिसका वर्णन किया है, माने यही जो प्राज्ञ है जिसका अभी प्राज्ञ तृतीय पाद का, ये जो प्राज्ञ है इसी को सर्वेश्वर कहते हैं। अब मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये तो उपनिषद बोल रहा है, एष सर्वेश्वर, एष फिर एष लगा दिया, एष सर्वज्ञ, इसी को शास्त्र में सर्वज्ञ कहा है, एषो अंतर्यामी, इसी को अंतर्यामी कहा गया, एष योनि सर्वस्य, यही सबके प्राकट्य का द्वार है, कारण है। प्रभव अप्ययौ हि भूतानां, सब भूत प्राणियों का प्रभव माने उत्पत्ति और अप्य माने लय, इनका सब उत्पत्ति और प्रलय सब भूतों की, यही है प्राज्ञ। तो ये तो समझ में आ ही गया है कि जागृत टूटेगी तो कहां जाएगी, सुषुप्ति में ही जाएगी, और स्वप्न टूटेगा तो कहां जाएगा, अगर जागृत में नहीं जाता तो सुषुप्ति में ही जाएगा। नारायण, तो ये प्रभवाप्ययो हि भूतानां, ये तो समझ में आता है, मान लो सृष्टि में कोई भूत प्राणी न रहे, आज जो दिख रहे हैं वो सब न रहे, न पहाड़ रहे, न समुद्र रहे, न धरती रहे, न आदमी रहे, न पशु रहे, न पक्षी, इसी को तो प्रलय बोलते हैं ना, ये सब नहीं रहे तो कहां जाएंगे। बोले इसको देखने वाला ही नहीं बचेगा, जाने का कौन। कल तो आपको किस्सा सुनाया ही था बाबूजी का, कि आप ही कहां बचोगे जो देखोगे कि मैंने सृष्टि बनाई कि नहीं बनाई। तो हमारी तो सुषुप्ति हो गई ना, फिर अगर सारे संसार के प्रलय होगी तो हम तो संसार की सुषुप्ति में पहुंच गए, पहले तो एक शरीर की सुषुप्ति में ही जाते थे, अब पूरे संसार की सुषुप्ति में पहुंच गए। तो क्या परमात्मा भी खत्म हो गया, शास्त्र वाला परमात्मा ईश्वर, क्या वो भी खत्म हो गया। बोले ये सब लीन तो जाके परमात्मा में ही होते हैं ना, और फिर जब उत्पत्ति काल सृष्टि का आता है तो परमात्मा में जो लीन थे भूत वही फिर उदय हो जाते हैं, यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में थे फिर वैसे ही अगले कल्प में भी हो जाते हैं। नारायण, ये एक होती है खंड प्रलय और एक होती है महाप्रलय। तो खंड प्रलय में तो कुछ चीजें माने ये शरीर जो है चेतन प्राणियों के ये लीन हो जाते हैं, लेकिन पंचभूत लीन नहीं होते हैं, और महाप्रलय में पंचभूत भी लीन हो जाते हैं और उनके जो अधिकारी देवता हैं वो भी सब लीन हो जाते हैं। तो हम तो महाप्रलय की बात सोच रहे हैं इस समय, तो सब तो लीन हो चुके हैं, तो उस महासुषुप्ति में हम चले गए, यही तो अर्थ हुआ ना। तो ठीक ही कहा है कि ये अच्छा, मेरी सुषुप्ति और आपकी सुषुप्ति में भेद कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? अरे भेद करने के लिए कोई भेदक चीज चाहिए ना बीच में, कि ये लक्षण इसमें तो है इसमें नहीं है। कोई बीच में ऐसी चीज चाहिए जो एक में हो और दूसरे में ना हो, भेदक तो चाहिए कोई। अमा सुषुप्ति में तो सप्पम सप्पा हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ना भेदक, भेदक ही कुछ नहीं है, तो किससे भेद करेंगे? लेकिन अधिष्ठान तो बचेगा ही बचेगा ना, परमात्मा तो बचेगा ही। जैसे एक एक व्यक्ति की सुषुप्ति में आत्मा तो रहता ही है, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि की सुषुप्ति में परमात्मा तो रहता ही है। अच्छा, एक व्यक्ति की सुषुप्ति में क्या आत्मा परमात्मा का भेद कर सकते हो? उन दोनों में भी तो भेदक चाहिए ना। बोले मैं तो अल्पज्ञ हूं, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक। अरे वह सर्व ही नहीं है, अल्प और सर्व का भेद ही नहीं है। तो अल्पज्ञ और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और अल्पशक्तिमान, इनका भेद ही नहीं है वहां पर। जब भेद नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सुषुप्ति में ये जीव है और ये ईश्वर है? तो जो कुछ भी बच गया उसी के ये नाम है, जान ले वो तो ईश्वर है और ना जान लो तो जीव है ही है, कोई बात ही नहीं है, वो तो स्वीकार्य है। फिर भी अगर किसी को यही हो कि नहीं, हमें तो जब तक जीवन है ऐसे ही भाव से उपासना करनी है, तो ज्ञानपूर्वक मानो, एक होता है आत्मा, एक होती है आत्मीय। बाप और बेटे में क्या अंतर है? क्या दो शरीर नहीं है? लेकिन बाप कहता है, अरे मेरा सब तेरे ही लिए तो है भाई, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि तू और है मैं और हूं। जीव कहता है कि मैं और हूं तुम और हो, तो किसकी बात सच्ची है? भगवान की बात सच्ची है। बोले हाँ, बात तो आपकी सच्ची है, लेकिन मुझे ऐसा कहने में अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, फुल फ्रीडम है। अपने सनातन धर्म में कहीं भी ये नहीं है कि तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये जो कट्टरता आ गई है ना, इससे बहुत नुकसान हुआ है। फ्रीडम है सबके लिए, लेकिन अभी अंतर्यामी किसको बोलते हैं? ये स्वामी महेशानंद जी महाराज ने लिखा है कि अंतर्यामी किसको बोलते हैं? जो सबके अंतर में रह करके और यम माने शासन करे, नियमन करे। तो किस रूप से नियमन करता है? बोले मैं खाने मत जाओ, भीतर से बोल रहा परमात्मा, शराब खर में मत जाओ, व्यभिचार के स्थान पे मत जाओ। बोले नहीं, हम तो जाए बिना नहीं रह सकते। तो भीतर वाला बोलता है, मेरा डंडा खाने को तैयार रहो। तो भीतर रह करके वो धर्म का ज्ञान कराता है, और जब वो धर्म का पालन नहीं करता है तो उसकी दंड व्यवस्था करता है। यही अंतर्यामी का कार्य है ना। तो व्यवस्था तो उसने एक दफे कर दी है, वो तो सब लिखा हुआ है, उसमें वो हेर फेर करने को तैयार नहीं है। अब सीआरपीसी या जो कुछ भी है कानून दंड विधान, वो एक दफा बन गया, उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं क्योंकि आदमी बनाता है उन्हें, और भगवान तो दृष्टिपूर्ण है, उसने तो सीआरपीसी बना रखी है वेद और धर्मशास्त्र, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, पीछे मत रोना, हम पहले ही तुम्हें सावधान किए देते। तो सावधान भी वही करता है और दंड विधान भी वही करता है। अच्छा, अच्छे कार्य का पुरस्कार क्या देता है भगवान? वो हमने सारी जिंदगी ईमानदारी बरती, हमको क्या मिला? बेईमान तो आगे बढ़ गए, हम तो अपनी जगह पे ही पड़े हुए, ऐसे लोग शिकायत करते हैं। तो भगवान ऐसे पुरस्कार नहीं देता, बोले तुमने अच्छा काम किया, मेरी प्रसन्नता तुमको प्राप्त हुई, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, मानव जीवन धारण करने का एक फल तुमको प्राप्त हुआ, अब तुम संतों के पास जाओ और इसकी फुलफिलमेंट करो, जीवन करना। चला गया तो कल्याण, नहीं तो अगले जन्म में जाएगा, यही उसका फल है। ये फल नहीं है कि उसको एक के सौ मिल जाएंगे। वो किसी ने कहा बाबा ये कम्बल ले लो, बोले भाई मेरे पास तो कम्बल है, मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। बोले आपको तो नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। बोले तेरे को क्यों चाहिए? कि हमने पढ़ा है सुना है कि एक एक चीज दो तो उसकी सौ गुनी चीजें मिलती हैं स्वर्ग में। बोले अच्छा ऐसा, इसलिए देना चाहता है क्या? अच्छा ला कम्बल ले लिया। जब उठ के चलने लगा तो बोले वो जो सौ तुझे कम्बल मिलेंगे तो एक तो ये ले ले अब रह गए 99, तो स्वर्ग में तो हम और तुम मिलेंगे तो मां दे देंगे अरे भाई एक के सौ की वजह से दान मत करो, देना है तो आंख मीच के दे दो, नहीं देना है तो कुछ जबरदस्ती कुछ नहीं है। दान करोगे आपका लोभ कम होगा, नहीं करोगे तो पैसा तो छाती पे सामने रखा रहेगा लेकिन लोभ तो बढ़ेगा। तो एष सर्वेश्वर, अब कहते हैं जब इनमें भेद उस समय कुछ रहता ही नहीं है तो फिर दो दो एंटिटीज स्थापित करने की जरूरत क्या है? अगर फिर भी दो एंटिटी स्थापित करते हैं तो आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। सर्वम हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, यही तो उपनिषद की प्रतिज्ञा है ना। तो ये प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जबकि प्राज्ञ और परमेश्वर इन दोनों की एकता सिद्ध हो। तो जागते हुए भेद बुद्धि में तो सिद्ध नहीं हो सकती। तो सुषुप्ति में ज्ञान नहीं हो सकता लेकिन सुषुप्ति के विचार से ये एकता सिद्ध हो सकती है। तो विचार के लिए ही है ये मंत्र, एष सर्वेश्वर। जब संपूर्ण सृष्टि की प्रलय हो गई तब जो बचा, जैसा सुषुप्ति में यहां आत्मा बच गया, ऐसे ही सृष्टि में प्रलय होने के बाद क्या बचा? बोले ईश्वर बच गया, परमात्मा बच गया। अब चूंकि दोनों का भेद न प्रलय में हो सकता है न सुषुप्ति में हो सकता है, इसलिए दोनों एक ही हैं, वही सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने साधि दैविकस्य भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता। जितना भी भेद जागृत और स्वप्न का उदय होगा वो सब इसी अवस्था में से फिर उदय होना है, इसलिए उन सब का ईशन करने वाला यही है सुषुप्ताभिमानी प्राज्ञ। एष सर्वज्ञ। अच्छा, इसमें एक और वाक्य लिख दिया है, नैतस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषाम एव। कोई इस प्राज्ञ से भिन्न जाति का ईश्वर होता है ऐसा भाव नहीं करना। अरे भिन्न जाति, जैसे भिन्न जाति क्या, हमारे तो दो हाथ है। तो जयदयाल जी के एक लेख में हमने पढ़ा कि यदि भगवान के भी दो ही हाथ हों तो हमारी उनमें अलौकिक बुद्धि नहीं होगी, इसलिए भगवान के चार हाथ शास्त्र ने बताया। चार हाथ वाला कहीं दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन चार इसलिए बता दिए कि दो तो सामान्यता सबको प्राप्त ही है, तो चार हाथ वाला होने से अलौकिक हो गया। अब फिर तो महाराज बाढ़ आ गई है, हर देवता के जने कितने कितने हाथ हो गए, कितने कितने मुंह हो गए, हर देवता के मूर्तियां बन गई, चित्र बन गए। तो बोले है नहीं क्या, बस ऐसे बता दिए चार। तो बोले देख लो, अगर आप चार हाथ वाले का ध्यान करोगे तो चार हाथ वाले का ही दर्शन होगा, और श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो क्या हाथ वाले का होगा दो हाथ वाले का होगा। फिर कहोगे कि ये तो श्री कृष्ण है, विष्णु भगवान नहीं है, तो फिर वहां भेद बुद्धि हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, अनेक बाहु शश सूर्य नेत्र, विराट परमात्मा तो कितने कितने हाथ हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ति। सारे हाथ परमात्मा ही के हैं, एक दो चार आठ इनमें सीमित करने की क्या जरूरत है। एष सर्वज्ञ, हां तो ये कोई अलग जाति का कोई परमेश्वर नहीं है। इस बात को ये क्यों लिखा कि ये जो नैयायिक लोग हैं, न्याय शास्त्र वाले, और ये पाशुपत मत वाले जो है, ये सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर को या शिव को, पाशुपत जो है शिव को मानते हैं और नैयायिक ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं बस निमित्त कारण है, वो तो कुम्हार है, उपादान कारण नहीं है, माने मिट्टी नहीं है, बस कुम्हार ही कुम्हार है वो। इसलिए वो जैसे कुम्हार घड़ा बनाकर के घड़े से अलग रहता है, ऐसे ही उसने संसार बनाया है लेकिन संसार से अलग है। तो ऐसा भाई ये वेदांत का पक्ष नहीं है, यहां कुम्हार भी वही है और यहां मिट्टी भी वही है, इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है सब वही 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 है, यही अद्वैत वेदांत बताता है। और श्रीमद् भागवत जो है उसकी विशेषता यही है कि है तो वो अद्वैत वेदांत ही बताता है, लेकिन वो जरा भक्ति की भाषा में लपेट करके बताता है। बोले श्री कृष्ण जो है वो ग्वाल बाल बन गए, गाय बछड़े बन गए, लकुट बन गए, सब बन गए, अब वहां पर बस एक शोषा लिख दिया उसमें। बोले आज वो श्रुति सार्थक हो रही है, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये संपूर्ण सृष्टि विष्णुमय है। तो बात तो इतनी समझानी है, अब वो लीला के माध्यम से समझा दी तो वो बात समझ में आ गई। नारायण, तो एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है क्योंकि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता। ये सर्वज्ञ का अर्थ ये मत समझ लाना कि कहीं एक जगह बैठ करके सब जगह की जानता है उसको सर्वज्ञ बोले। बोले अच्छा बताओ तुम सर्वज्ञ हो तो इस समय कलकत्ते में फलाना आदमी क्या कर रहा ऐसे लोग प्रश्न बोलते हैं। अब उनको क्या समझा मैं शास्त्र की बात जो है। सर्वज्ञ माने जो सर्व भी हो और सबको जानता भी, वही सब है और सबके हृदय में बैठ के वही सबको जान रहा है। आप अपनी जानते हो, मैं अपनी जानता हूं, बस इतना ही तो अंतर है ना। आप मेरी नहीं जानते, मैं आपकी नहीं जानता। लेकिन अगर ये बात पता चल जाए कि जानने वाला एक ही है, तो आप ये भी जान सकते हो कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, और आप मेरे बारे में जान सकते हो कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन जब तक वो अभिमानी बने रहेंगे एक अंतःकरण के, तब तक नहीं जान सकते, तब तक अपने अपने की जानेंगे। इस अभिमान का मटकोटा तोड़े बिना ये परमात्मा तक नहीं पहुंचता है। एष अंतर्यामी एष योनि ही सर्वस्य, इसी सुषुप्ति में से प्रलय में से ही सब प्रकट होते हैं। प्रभव और अप्यय सब भूतों की उत्पत्ति और प्रलय, तो उत्पत्ति कहने से निमित्त कारण, और अप्यय माने प्रलय कहने से उपादान कारण। घड़ा फूटता है तो कुम्हार में नहीं मिलता है, जाएगा मिट्टी में ही मिलता है। तो प्रलय में सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा में लीन होती है, और जब उत्पत्ति काल आता है तब परमात्मा के द्वारा परमात्मा से परमात्मा ही प्रकट होता है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।